नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के इमामगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों के तहत बिहार समेत देश भर के 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक। आम चुनाव के विभिन्न चरणों में मतदान से 72 घंटे पूर्व भारत नेपाल सीमा होगी सील। आपात स्थिति में ही वाहनों के आवागमन की मिलेगी अनुमति। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन समेत कई दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया जिले के इमामगंज में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा भी आज औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित करने के साथ ही रोड शो करेंगे। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव आज जमुई, गया और मुंगेर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल जमुई में एनडीए समर्थित लोजपा रामविलास के उम्मीदवार अरुण भारती के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में एक चुनावी सभा में कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग सावन और नवरात्र के दौरान भी मांस मछली का सेवन करते हैं, इसका वीडियो बनाकर जारी करते हैं। उन्होंने कहा कि देश का कानून किसी को कुछ भी खाने से नहीं रोकता है, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, लेकिन ये लोग वीडियो जारी कर अपनी मुगल मानसिकता से लोगों को चिढ़ाते हैं। श्री मोदी ने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं, इतना ही नहीं उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं।
गौरतलब है कि चैत्र नवरात्र के पहले दिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने हेलीकॉप्टर पर मछली खाते हुए एक वीडियो शेयर किया था। वहीं बीते सावन के महीने में दिल्ली में मीसा भारती के घर पर लालू प्रसाद का मटन बनाते हुए एक वीडियो राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया था। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों के तहत बिहार समेत देश भर के 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 संसदीय सीटों पर चुनाव होना है। इस चरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए आयोग ने 127 सामान्य, 67 पुलिस और 167 व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। राज्य में सभी 40 सीटों के लिए 80 पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। मतदान से 72 घंटे पूर्व दोनों देशों की सीमाओं को सील कर दिया जाएगा। केवल आपात स्थिति में ही वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जाएगी। पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल में भारत और नेपाल के उच्च अधिकारियों की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिए गए हैं। इसके साथ ही नेपाल से भारतीय सीमा में आने वाले नागरिकों को आधार कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ और दिव्यांगजनों के लिए घर से मतदान की सुविधा शुरू की है। इसके तहत 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% तक दिव्यांगता वाले व्यक्ति घर से मतदान की सुविधा का विकल्प चुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में राज्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि इस श्रेणी के मतदाताओं ने पहले और दूसरे चरण के मतदान के तहत वोट डालना शुरू कर दिया है।
बुजुर्ग में और दिव्यांगजन में भारत निर्वाचन आयोग ने एक स्पेशल होम वोटिंग फैसिलिटी दिया है। 85 साल के ऊपर का प्लस पीडब्ल्यूडी जन जो जिन लोगों का लाचारी है आके वोट डालने में, वैसे लोग फॉर्म 12D भर सकता है, उन लोगों का मतदान शुरू हो गया। आपको मैं बता दूं कि मैं परसों भी जब ये चारों जिलों का जिला पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी उनसे मैंने जब मीटिंग रिव्यू कर रहा था, उन लोगों का वो लोग घर घर जाकर के वोटिंग करवाना काम शुरू कर दिया था, शायद आजकल में वो समाप्त भी हो जाएगा। और हम लोग दिव्यांग जन को जिन लोगों का 40% से अधिक दिव्यांगता है, वैसे लोग रिक्वेस्ट करने पर उन लोगों को घर से मतदान केन्द्र आने का वापस जाने का ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था भी रखे है ताकि वो लोग भी आके मतदान कर सके।
गौरतलब है कि घर से मतदान के लिए देशभर में 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 81 लाख और 90 लाख दिव्यांग मतदाताओं ने अपना पंजीकरण कराया है। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सदस्य अहमद अशफाक करीम ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने उन्हें कटिहार लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने का वादा किया था, लेकिन यह सीट कांग्रेस को दे दी गई है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने यहां से तारिक अनवर को उम्मीदवार बनाया है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के खिलाफ केहाट थाना में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इधर गोपालगंज जिले के फुलवरिया थाना में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर हरिहरा गांव के चंद्रहास राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। खगड़िया जिले के करुआ मोड़ के पास पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक व्यक्ति के पास से 10 लाख रूपये जब्त किए हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Patna पर भी सुने जा सकते हैं। और अब पेश है लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर आधारित आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति। आज के इस अंक में आप सुनेंगे पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों और आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट।
पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में छठे चरण के तहत 25 मई को मतदान होगा। जिलाधिकारी सौरभ जोलवाल ने बताया कि चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जगह जगह से पोस्टर बैनर हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कृत संकल्प है।
तो अनुपालन करेंगे। कोई भी सरकारी कर्मी किसी भी ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के सहयोग के लिए हो। उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 3 महीने की सजा उसमें अंदर है, उसके अंदर एफआईआर की जाएगी। इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि अभी सभी लोग सतर्क रहें, आचार संहिता का पालन करें ताकि ऐसी स्थिति दोबारा न हो और चुनाव जो है हमारा शांतिपूर्ण से।
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार के चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं।
दिव्यांग वोटर के लिए इस बार विशेष व्यवस्था की गई है। एक तो एब्सेंटी वोटर में उनको माना गया है, जो व्यक्ति अगर फॉर्म 12D हमारे यहाँ पर है, अगर नामांकन के 5 दिन बाद तक उसको जमा भर के जमा कराता है तो उसके यहाँ पे हम लोग टीम भेज के मतदान करवाएंगे, उसको तिथि बताई जाएगी। अगर वो बूथ पे आता है तो हमारे यहाँ पे 1885 लोकेशन में 3496 बूथ है और सभी लोकेशन पे हम लोग एक एक व्हील चेयर की व्यवस्था करेंगे। उनको एक ऐप भी उनके लिए बनाई गई है जो उनको बाकी जानकारी देगी। तो दिव्यांगों के लिए विशेष हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी विधानसभा क्षेत्र में एक एक बूथ ऐसा होगा जिसमें केवल दिव्यांग कर्मी ही उस पूरा चुनाव उस बूथ पे करेंगे।
पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नए मतदाताओं में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह है।
मेरा नाम सृष्टि श्री है, मैं 20 वर्ष की हूँ। मैं पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली हूँ। मैं पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। मैं चाहूंगी कि मैं जिसे भी मतदान करूँ वो हमारे लिए अच्छा सोचे, हमारे शिक्षा, बेरोजगार और स्वास्थ्य का ध्यान रखे और हमारे देश के लिए बहुत अच्छा अपना कार्य करें और मैं वाकिलों से भी अपील करूंगी कि वो अभी आकर अपना मतदान ज्यादा से अधिक संख्या में करें।
इधर राजनीतिक दलों ने भी क्षेत्र में चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मोतिहारी से आलोक कुमार।
और अब बात चैती छठ की। लोक आस्था के चार दिवसीय महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। आज शाम व्रती भगवान भास्कर को खीर का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करेंगे। इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ अर्पित किया जाएगा। 15 अप्रैल को उदीयमान सूर्य को अर्घ अर्पित करने के साथ चार दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। हमारे औरंगाबाद संवाददाता ने बताया है कि देव सूर्य मंदिर में चैती छठ पूजा को लेकर विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इधर पटना जिले में दानापुर से पटना सिटी तक 53 गंगा घाटों पर अर्घ्य अर्पित करने की तैयारी की जा रही है। महापर्व छठ को लेकर राजधानी पटना में यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कल दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक अशोक राजपथ पर व्यवसायिक वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को चैती छठ की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल श्री आर्लेकर ने अपने संदेश में कहा है कि यह पर्व हमें जीवन में आत्मसंयम और अनुशासन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन आज देवी दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि माता के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। इस अवसर पर राजधानी पटना सहित प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शक्तिपीठों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश के मिथिला क्षेत्र में आज सतुवानी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन लोग जौ और चने का सत्तू के साथ ही आम के टिकोले की चटनी का सेवन करते हैं। वहीं कल जुड़ शीतल का पर्व मनाया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज मधुबनी, अररिया, सुपौल और सहरसा जिले में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश हुई है। अररिया के नरपतगंज में सबसे अधिक 18.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं कैमूर जिले के अधौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीकरवार गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में 2 महिलाओं की मौत हो गई। दूसरी तरफ पिछले 2 दिनों से हुई हल्की बारिश से राज्य का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के दौरान तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना व्यक्त की है। इसके बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी का पूर्वानुमान है। बांका जिले के धुरैया थाना क्षेत्र के अहिरो गांव में बम बनाने के दौरान एक घर में विस्फोट से 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान 1 बच्चे की मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वारसलीगंज में चुनावी सभा को बड़ी खबर बनाया है। अखबार ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है, जब भी मौका मिला लालू ने परिवार को बढ़ाया। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच विवाद और गहराया। प्रभात खबर बिहार पुलिस दीक्षांत परेड समापन समारोह पर लिखता है, सूबे को मिले 1903 एसआई, इनमें 702 महिलाएं शामिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी। जदयू के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज गया के इमामगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तैयारियों के तहत बिहार समेत देशभर के 350 से अधिक चुनाव पर्यवेक्षकों के साथ की समीक्षा बैठक। आम चुनाव के विभिन्न चरणों में मतदान से 72 घंटे पूर्व भारत नेपाल सीमा होगी सील। आपात स्थिति में ही वाहनों के आवागमन की मिलेगी अनुमति। और लोक आस्था के महापर्व चैती छठ के दूसरे दिन आज व्रती खरना का अनुष्ठान करेंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।